हाय दोस्तों, क्या आपको फिल्में देखना पसंद है? आप सोचेंगे ये कैसा सवाल है, क्योंकि शायद ही कोई होगा जिसे फिल्मों में कोई दिलचस्पी ना हो। ऐसा क्यों है? शायद इसलिए कि हम बचपन से कहानियाँ सुनकर बड़े होते हैं। किस्से कहानियाँ हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा हैं, और अगर कुछ कहानियाँ हमें देखने को मिल जाएं, तो भाई सोने पे सुहागा, है कि नहीं? दोस्तों, मैं हूँ गीतिका, और मुझे फिल्में देखने का बहुत शौक है। एक्चुअली सिर्फ देखने का नहीं, लेकिन अगर कोई मुझे फिल्म पसंद आ जाती है तो मैं चाहती हूँ कि मेरे घर वाले, मेरे दोस्त भी उसे ज़रूर देखें। खासकर जब मैं टेंस होती हूँ ना, या दिन भर की थकी होती हूँ, तब मैं कोई नई मूवी देखने की ना रिस्क नहीं लेती। बस अपने मूड के हिसाब से कोई फेवरेट मूवी ही दोबारा देख लेना पसंद करती हूँ, क्योंकि पता होता है ना यार कि क्या देखने वाली हूँ और उस मूवी का क्या इम्पैक्ट होने वाला है। क्योंकि उस वक्त ना, जब आप थके होते हो, कोई सरप्राइजेज नहीं चाहिए होते, बस कुछ ऐसा चाहिए होता है कि मूड ठीक हो जाए या थोड़ी बहुत एनर्जी मिल जाए। जैसे कम्फर्टिंग फूड्स होते हैं ना, हम झट से बना लेते हैं, खा सकते हैं, लाइक नूडल्स या सैंडविच, वैसे ही कोई देखी हुई मेरी फेवरेट फिल्म हो तो वो मुझे सुकून देती है। दोस्तों, कुछ फिल्में हंसने हंसाने वाली होती हैं, कुछ जिंदगी के सलीके सिखा देती हैं, हमारी संस्कृति या हमारी वैल्यूज को याद दिलाने वाली होती हैं। कोई एडवेंचर फिल्म्स हैं जो मुझे पसंद हैं, तो कोई प्रॉपर रोमांटिक, और कभी कोई फिल्म सिर्फ इतना ही एहसास दिला जाती है कि जिंदगी खूबसूरत है, अच्छी है, जीने लायक है। हम ना फिल्मों में दूसरों का दुख, दूसरों की जद्दोजहद देखकर कुछ देर के लिए अपनी तकलीफें भूल जाते हैं। कभी लगता है कि हमारी ज़िंदगी तो यार इससे बहुत बेहतर है, तो कभी उम्मीद बनती है कि कुछ भी हो जाए, हम भी अपनी तकलीफ से उभर सकते हैं, कामयाबी पा सकते हैं, फिर सुबह होगी, फिर अच्छे दिन आएंगे। तो दोस्तों, मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सबसे उन फिल्मों के बारे में बातें करूं जो मेरी फेवरेट फिल्म्स हैं, जो मुझे कंफर्ट देती हैं। और मज़ेदार बात यह है कि जितनी बार भी मैं उन्हें देखूं, मैं थकती नहीं हूं। क्योंकि क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि कोई फिल्म दोबारा देखने पे उसी फिल्म में आपको कुछ नया दिख गया हो, या कोई नई बात समझ में आ गई हो, और ऐसा लगा हो कि अरे पहले ये सीन कैसे मिस हो गया था, या ये बात हमें क्यों याद नहीं? हुआ है ऐसा? होता दरअसल ये है कि हम हर दिन, हर पल बदल रहे हैं। हमारी ज़िंदगी के तजुर्बे हमको एक नए लेवल पे ले जाते हैं ना। तो वही किताब या फिल्म जो हमने 2 साल पहले पढ़ी हो या देखी हो, उसी में हमको नए पहलू दिखने लगते हैं, नई बसीरत समझ में आती है, गहराई समझ में आती है, क्योंकि दरअसल हम ग्रो कर रहे होते हैं। एनीवे, मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं आपके साथ उन फिल्मों के बारे में बात करूंगी जो मेरे दिल के बहुत बहुत करीब हैं। मैंने उन्हें कई बार देखा है, और जितनी बार भी देखूं कम है, तो देर किस बात की। चलिए मेरे साथ मेरी फिल्मों की दुनिया में। सबसे पहले नंबर पे मेरी फेवरेट फिल्म है 1971 यानी 1971 में रिलीज हुई हिंदी फिल्म आनंद। आनंद की मुख्य भूमिका निभाई थी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के पहले सुपर डुपर स्टार राजेश खन्ना ने, और उनका साथ दिया था अमिताभ बच्चन, रमेश देव, सीमा देव, बंगाल की एक खूबसूरत हीरोइन थी सुमिता सान्याल उन्होंने, और कुछ बहुत ही खास रोल्स में थे ललिता पवार, दुर्गा खोटे, दारा सिंह, और हमारी फिल्म इंडस्ट्री के टॉप के कॉमेडियन जॉनी वॉकर साहब। किरदार कितना ही छोटा क्यों ना हो, इस फिल्म में सबका रोल बहुत अहम था, और सबने बखूबी निभाया भी। उस वक्त तक राजेश खन्ना की आराधना सुपरहिट हो चुकी थी, और वो एक सुपरस्टार बन चुके थे, इसलिए उनके पास शूटिंग डेट्स नहीं थी। पर क्योंकि ये कहानी उन्हें बहुत पसंद आ गई थी, इसलिए उन्होंने बस 1-1.5 घंटा रोज निकाल कर इस फिल्म की शूटिंग की। लेकिन अमिताभ बच्चन जिस महान नायक के मुकाम पर आज हैं, उस वक्त बिल्कुल नहीं थे। वो तो एक्चुअली प्रोड्यूसर्स के चक्कर लगा रहे थे, और बस अभी तक उनकी एक फिल्म सात हिंदुस्तानी आ चुकी थी। फिर उनकी मुलाकात नरगिस जी से हुई, जिनको उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सुनील दत्त जी की अगली फिल्म में उन्हें कोई छोटा मोटा रोल दिला दें। सुनील दत्त जी उस वक्त रेशमा और शेरा एक बहुत ही बड़ी फिल्म की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने नरगिस जी के कहने पर अमिताभ को अपने छोटे भाई का रोल देना मंजूर कर लिया। मज़ेदार बात यह है कि अमिताभ बच्चन, उनकी जिस आवाज़ पे हम लोग फिदा हैं, उस वक्त उसकी कीमत शायद किसी ने नहीं पहचानी थी, और अमिताभ जी को रेशमा और शेरा में एक गूंगे भाई का रोल मिला। लेकिन वो भी उन्होंने इतनी शिद्दत से निभाया कि सभी ने उनको बहुत सराहा। रेशमा और शेरा भी मेरी पसंदीदा फिल्मों में से है, और उसकी भी बातें करूंगी किसी और पॉडकास्ट में। लेकिन जब आनंद में लोगों ने अमिताभ बच्चन को देखा, तो उनकी प्रतिभा को पहचाना, और उन्हें उस साल फिल्मफेयर अवार्ड भी मिला बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का। ऋषिकेश मुखर्जी, जिन्हें इंडस्ट्री में ऋषिदा कह के बुलाया जाता था, उनके निर्देशन में बनी थी ये फिल्म आनंद। कहते हैं ऋषिदा राज कपूर साहब के अच्छे दोस्त थे, और राज कपूर ऋषिकेश मुखर्जी को बाबू मोशाय कह के पुकारते थे। यही शब्द उन्होंने आनंद फिल्म में भी इस्तेमाल किया, और फिल्म की शुरुआत में राज कपूर को और बम्बई शहर को ये फिल्म डेडिकेट की है। आनंद फिल्म ने उस साल के सभी बड़े अवार्ड्स जीते थे। फिल्मफेयर का बेस्ट एक्टर अवार्ड राजेश खन्ना को मिला, सपोर्टिंग एक्टर जैसा मैंने बताया मिला अमिताभ बच्चन को, ऋषिदा को बेस्ट फिल्म के लिए अवार्ड मिला, और बेस्ट डायलॉग्स के लिए गुलजार साहब को। वैसे गुलजार साहब का फिल्मी करियर भी बहुत इम्प्रेसिव रहा है, और उनके बारे में हम कभी और डिटेल्स में बात करेंगे। फिलहाल यही बताना चाहूँगी कि गुलजार साहब का फिल्मी सफ़र आनंद फिल्म के करीब 10 साल पहले से शुरू हो चुका था, एज अ सॉन्ग राइटर, या जिसे हम लिरिसिस्ट या गीतकार भी कहते हैं। उन्होंने कई खूबसूरत गाने फिल्मों के लिए ऑलरेडी लिखे थे, काबुलीवाला, बंदनी, पिंजरे के पंछी, आशीर्वाद, दो दूनी चार, संघर्ष, अनुभव वगैरह वगैरह, लिस्ट बहुत लंबी है। और आनंद के बाद भी कितनी ही फिल्मों में गुलजार साहब के गीत गाए गए, और हमने बहुत इन्जॉय किया। यहाँ तक कि उनका स्लमडॉग मिलियनेयर का गाना जय हो आज भी दुनिया भर में धूम मचा रहा है, और उसके लिए गुलजार जी को और रहमान को ऑस्कर अवार्ड्स भी मिले। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए। आनंद फिल्म में गुलजार और योगेश के लिखे गीत थे, और गुलजार ने इसके डायलॉग्स भी लिखे। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, मैं आपको कुछ ज़बरदस्त डायलॉग्स भी बताऊंगी। सिंपल लफ्ज़ों में गहरी बात कहना, ये गुलजार साहब की खासियत रही है। आनंद एक ऐसी फिल्म है जिसमें हीरो ही कैंसर का मरीज है, और हम ऑडियंस जानते हैं कि वो फिल्म के एंड में मरने वाला है। फिर भी जिस तरह उसका किरदार लिखा गया, और फिर जितनी शिद्दत से राजेश खन्ना ने उसे निभाया, हम पहले सीन से आखिरी सीन तक फिल्म से चिपके रहते हैं। सबसे बड़ी खूबी इस कहानी की ये है कि खुद हीरो भी शुरू से ये जानता है कि वो कुछ ही महीने जीने वाला है, पर इसकी बजाय कि वो निराश होकर हॉस्पिटल में भर्ती होके अपने आखिरी दिन गिने और मौत का इंतज़ार करें, खुद रोए और सबको भी रुलाए, आनंद अपने आखिरी दिन पूरी तरह से जीना चाहता है। वो अपना दर्द किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता, बस सबसे दोस्ती करके सबको खुश देखना चाहता है, सबको आनंद देना चाहता है। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट है डॉक्टर भास्कर, यानी अमिताभ बच्चन का किरदार। वो एक ऐसा डॉक्टर है जो अपने पेशे से निराश हो चुका है। वो इतनी बीमारी, इतनी लाचारी देख चुका है कि बिल्कुल निराशावादी बन गया है। लेकिन फिर आनंद, एक कैंसर पेशेंट, उसकी जिंदगी में आता है, और उल्टा डॉक्टर को ही जीने का गुर सिखा जाता है। आनंद फिल्म की शुरुआत होती है जहां आनंद मर चुका है और डॉक्टर भास्कर ने उसके ऊपर एक किताब लिखी है और वो उसके बारे में बताना शुरू करता है। फिल्म के पहले दो सीन्स में ही अमिताभ का किरदार एकदम सेट हो जाता है। जिस तरह से वो बात करता है, जो उसकी सोच है, इस डायलॉग से ही पता चल जाता है कि उसका नेचर कैसा है। जब वो ये कहता है, मैं जिंदगी से निराश हो चुका था, हर तरह की बीमारी और गरीबी देख देख के मेरे हौसले टूट चुके थे, मैं डॉक्टरी के पेशे से हताश हो चुका था। बीमारी से तो फिर भी लड़ सकता था, लेकिन भूख और गरीबी से कैसे लड़ता। जिस जंग के लिए मैं मैदान में उतरा था, उस जंग के हथियार मेरे पास नहीं थे। और यहां से ही फ्लैशबैक शुरू हो जाता है। हम देखते हैं कि कैसे डॉक्टर भास्कर झुग्गी झोपड़ियों में जा जाकर इलाज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब उन्हें बचा नहीं पाता तो खुद भी उदास हो जाता है। इस बिगनिंग सीन के बाद ही हम मिलते हैं भास्कर के दोस्त और कलीग डॉक्टर प्रकाश कुलकर्णी से, जो स्मार्ट और आशावादी डॉक्टर है और प्रैक्टिकल भी है। वो अमीरों से मोटी फीस लेता है और कभी कभी किसी गरीब का फ्री में इलाज भी कर देता है। ये रोल निभाया है रमेश देव ने, और उनकी जो असल जिंदगी में बीवी थी सीमा देव, वही इस फिल्म में भी उनकी वाइफ बनी है, सुमन। तो प्रकाश भास्कर को बुलाता है और बताता है कि उनके एक पुराने दोस्त त्रिवेदी ने दिल्ली से एक पेशेंट बॉम्बे भेजा है, जिसका नाम है आनंद। भास्कर जब पूछता है कि आनंद को बीमारी क्या है, तो पता चलता है लिम्फोसर्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन, यानी पेट का घातक कैंसर। भास्कर प्रकाश से पूछता है कि आनंद को मुंबई भेजने का क्या मतलब, जब त्रिवेदी जानता है कि ये लाइलाज है। इस पे प्रकाश कहता है कि वो अभी एम्बुलेटरी स्टेज पे है, मतलब घूम फिर सकता है और बहुत ही हंसमुख किस्म का इंसान है, इसलिए बस हमसे मिलने आ रहा है और जो भी कुछ हम यहाँ कर सकते हैं करेंगे उसके लिए। भास्कर नाराज हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि इसका इलाज वो नहीं कर सकेगा। अभी दोनों में बातचीत हो ही रही होती है कि आनंद यानी राजेश खन्ना उनकी कैबिन में एंटर होता है। आनंद की एंट्री ही इतनी जोश और उत्साह से भरी हुई है कि भास्कर को हैरानी होती है कि जो इंसान 5-6 महीनों में मरने वाला है, वो इतना खुश मिजाज कैसे। बहुत ही जॉली नेचर और बातूनी किस्म का युवक दिखाया है आनंद को। प्रकाश से मिलने के बाद आनंद नोटिस करता है कि सामने उसी का एक्सरे लगा हुआ है। वो तपाक से बोलता है, अरे वाह, यहाँ तो मेरी ही फिल्म चल रही है। फिर प्रकाश आनंद को भास्कर से इंट्रोड्यूस करता है और मिलते ही आनंद उसका नाम बाबू मोशाय रख देता है और उसे भी छेड़ने चिढ़ाने लगता है। लेकिन भास्कर एकदम चुप और उदास है और थोड़ी देर बाद चिढ़ के आनंद से कहता है, आप जानते भी हैं आपको बीमारी क्या है। आनंद इनोसेंटली कहता है, जी हाँ डॉक्टर, मुझे कैंसर है और मैं 6 महीने से ज़्यादा नहीं जीने वाला। ये सुनकर भास्कर और हैरानी से आनंद की तरफ देखता है। आनंद उसके दिल की बात समझता है। वो जानता है कि डॉक्टर भास्कर लाचार महसूस कर रहा है क्योंकि उसकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है ना। इसलिए फिर हंसकर आनंद मेरे हिसाब से इस फिल्म का सबसे इम्पॉर्टेंट और गहरा डायलॉग बोलता है। वो कहता है कि आप भी तो 70 साल और जिएंगे, तो क्या फर्क पड़ता है 70 साल या 6 महीने। मौत तो एक पल है बाबू मोशाय, आने वाले 6 महीनों में मैं जो लाखों पल जीने वाला हूँ उनका क्या। बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। अगर मौत के डर से जिंदा रहना छोड़ दूं तो मौत किसे कहेंगे। जब तक जिंदा हूं मरा नहीं, और जिस दिन मर गया तो साला मैं ही नहीं, तो फिर डर किस बात का। भास्कर समझ जाता है कि ये बंदा मेंटली और इमोशनली बहुत स्ट्रांग है। फिर प्रकाश अपने ही नर्सिंग होम के एक प्राइवेट रूम में आनंद के रुकने का इंतजाम कर देता है, जहां उसकी मुलाकात होती है सिस्टर मेट्रन से, जो बहुत स्ट्रिक्ट है और उसको चुपचाप लेट जाने को कहती है। लेकिन आनंद उसके साथ भी हंसी मजाक करना चाहता है, तो वो और डांट देती है। और फिर बाद में जब डॉक्टर प्रकाश वहां आता है तो मेट्रन आनंद का रोग पूछती है, और पता चलने पे कि वो लास्ट स्टेज कैंसर पे है, उसे भी विश्वास नहीं होता। कि आनंद जैसा हंसमुख बातूनी लड़का कैसे इतनी जल्दी मौत का शिकार बन सकता है। इस किरदार में है ललिता पवार, जो अक्सर फिल्मों में नेगेटिव रोल्स किया करती थीं, लेकिन यहाँ उन्होंने एक स्ट्रिक्ट लेकिन बहुत ही सेंसिटिव नर्स का रोल बहुत सुंदर निभाया है। दूसरे ही दिन आनंद नर्सिंग होम से भागकर भास्कर के घर चला जाता है और रिक्वेस्ट करता है कि उसे वहीं रहने दिया जाए, क्योंकि हॉस्पिटल में तो अच्छा खासा इंसान भी बीमार लगने लगता है और वो मौत से पहले मरना नहीं चाहता। भास्कर उसका इंतज़ाम अपने ही घर में करके प्रकाश को इन्फॉर्म कर देता है। फिल्म आगे बढ़ती है और आनंद प्रकाश की वाइफ सुमन से भी मिलता है। दोनों में बिल्कुल भाई बहन के जैसा प्यार हो जाता है, लेकिन सुमन को अभी ये नहीं पता चलता कि आनंद बस कुछ ही दिन का मेहमान है। फिल्म के ऑलमोस्ट एंड में जब वो भास्कर और प्रकाश को डिस्कस करते हुए सुनती है कि जल्द ही आनंद का हिलना डुलना और घर से बाहर निकलना भी बंद हो जाएगा, उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है और वो फूट फूट के रो पड़ती है। आनंद वहाँ आ जाता है और जब उसे रोता हुआ देखता है तो कहता है, पगली, तेरा भाई एक दिन मर जाएगा इसलिए तू रो रही है, लेकिन आज वो तेरे सामने जिंदा खड़ा है, उसे देख के तू खुश नहीं हो सकती। ये इस तरह की बातें जो आनंद के थ्रू या आनंद के मुंह से डायरेक्टर ऋषिदा ने बुलवाई और गुलजार ने इतने गहरे डायलॉग्स लिखे, वो सचमुच दिल को छू जाते हैं और हमें सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि वाकई हम लोग आज में जीते ही नहीं हैं। जो है हमारे पास आज, उसके लिए शुक्रगुजार नहीं होते। या तो हम बीते कल को याद करते रहते हैं और या फिर आने वाले कल की चिंता में इस पल को भी खो देते हैं। 8 साल बाद ऋषिदा की ही एक हल्की फुल्की फिल्म गोलमाल में गुलजार साहब ने एक और इसी तरह का गाना लिखा था, जो आपने जरूर सुना भी होगा और बेहद पसंद भी किया होगा। आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दे, पल जो ये जाने वाला है। फिल्म आगे बढ़ती है और आनंद को पता चलता है कि भास्कर अपनी एक पेशेंट को बहुत चाहने लगा था, लेकिन शर्मीला होने के कारण और लिहाज की वजह से शायद बोल नहीं पाया। आनंद ये भी जानता है कि भास्कर का भी आनंद ही की तरह दुनिया में और कोई नहीं है, तो बस ये जिम्मेदारी आनंद खुद पे ले लेता है और उस लड़की यानी रेनू का पता पूछते पूछते उसके घर पहुंच जाता है। रेनू की माँ, जिसका रोल दुर्गा खोटे ने निभाया, उनसे भास्कर के मन की बात कहता है और दोनों की शादी फिक्स करवा देता है। शाम को जब घर पहुंचता है तो आनंद देखता है कि भास्कर उदास अंधेरे में बैठा हुआ है। आनंद उसे जिद करता है कि वो कहीं बाहर निकले, लेकिन भास्कर बिफर उठता है और चिल्ला के उसे अकेला छोड़ देने के लिए कहता है। आनंद सहम के मान जाता है और कहता है कि वो वहां से चला जाएगा, क्योंकि वैसे भी उसे हर पल अपनी मौत भास्कर के चेहरे पे, उसकी खामोशी, उसकी उदास आंखों में दिखती रहती है। इससे तो अच्छा है वो वहां से चला जाए। इस पर भास्कर उठकर खड़ा हो जाता है। उसे अपनी कमजोरी का एहसास होता है। वो आनंद को रोकता है और कहता है, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रुकोगे मेरे पास और मरोगे भी मेरी बाहों में। भास्कर की ये बात सुनकर आनंद इम्प्रेस हो जाता है। पहली बार भास्कर ने कुछ पॉजिटिव होकर कहा था। फिर दोनों टेप रिकॉर्डर में अपनी अपनी आवाज रिकॉर्ड करते हैं। अमिताभ बच्चन यहाँ भी गुलजार साहब की लिखी एक बहुत ही खूबसूरत कविता पढ़ता है। छोटी सी कविता, भावपूर्ण है और जितनी बार अमिताभ बच्चन की आवाज में सुने मजा आ जाता है। कविता कुछ इस तरह है, मौत तू एक कविता है, मुझसे एक कविता का वादा है मिलेगी मुझको, डूबती नब्जों में जब दर्द को नींद आने लगे, जर्द सा चेहरा लिए जब चांद उफक तक पहुंचे, दिन अभी पानी में हो रात किनारे के करीब, न अंधेरा न उजाला हो न अभी रात न दिन, जिस्म जब खत्म हो और रूह को जब सांस आए, मुझसे एक कविता का वादा है मिलेगी मुझको। और यही एक सीन है पूरी फिल्म में, जिसकी एंड में अमिताभ बच्चन डॉक्टर भास्कर के किरदार में जोर जोर से हंसता है आनंद के साथ, उससे गले मिलके। आनंद तो पूरी फिल्म में हंसता हंसाता रहता है, लेकिन आखिर तो वो भी एक इंसान है और वो जानता है कि मौत उसके सिर पे मंडरा रही है। इसलिए 3-4 बार वो भी इस फिल्म में वल्नरेबल या उदास दिखाई देता है। जैसे एक सीन में सुमन कुलकर्णी उससे बहन होने के नाते आशीर्वाद मांगती है, तब मन ही मन आनंद कहता है, क्या आशीर्वाद दूं तुझे, ये भी तो नहीं कह सकता कि मेरी उम्र तुझे लग जाए। और फिर एक और सीन में जब रेनो आनंद को टेप रिकॉर्डर में किसी लड़की की आवाज़ सुनते हुए पकड़ लेती है और पूछती है कौन है, पहले तो आनंद टालने की कोशिश करता है, लेकिन रेनू के जिद करने पे वो उसे बताता है कि दिल्ली में वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। लेकिन जब आनंद को पता चला कि वो लास्ट स्टेज कैंसर पे है, तो वो बम्बई भाग आया और उस लड़की ने ये समझ के कि आनंद ने उसे धोखा दे दिया है, किसी और से शादी कर ली। आनंद रेनू से कहता है, मुझसे शादी करती तो मरती ना। लेकिन फिर जल्द ही बात को पलट के वो खुद को संभाल लेता है और बस फिर हंसी मजाक शुरू। फिल्म के क्लाइमैक्स में क्या होता है, जॉनी वॉकर का किरदार कैसे अहम भूमिका निभाता है, सबने कितना खूबसूरत और नेचुरल काम किया है, वो तो देखने से ही पता चलेगा। भास्कर अपनी बुक लॉन्च पे कहता है कि मैं लेखक तो नहीं हूं, लेकिन आनंद को दोस्त बनाने का बहुत शौक था, इसलिए उसको 2, 4, 10 की गिनती से निकालकर उसकी दोस्ती मैं पूरी दुनिया से करवाना चाहता हूँ, बस इसीलिए ये किताब लिखी है। तो दोस्तों, क्या आप भी दोस्ती करना चाहेंगे आनंद से? मुझे यकीन है इस फिल्म को देखने के बाद ना आपको भी आनंद से प्यार हो जाएगा और जिंदगी में जो कुछ वो सिखा गया उससे आप भी अछूते नहीं रह पाओगे। आप भी ये फिल्म देख सकते हैं Amazon Prime और गोल्डमाइन बॉलीवुड के YouTube चैनल पे। देख के बताना कैसी लगी। मेरी भी यही कोशिश रहती है कि मैं आज में हर पल हर लम्हा पूरी तरह खुशी खुशी जीऊं, क्योंकि किसी ने सही कहा है ना, क्या पता कल हो ना हो। दोस्तों, ज़रूर बताना आज की मेरी ये कहानी कैसी लगी, और अगर आपकी मनपसंद कोई फिल्म हो तो उसका नाम भी मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। आने वाले एपिसोड्स में मैं डेफिनेटली आपकी पसंदीदा मूवी के बारे में भी बात करूंगी। तब तक के लिए अलविदा, नमस्ते, बाय बाय। सुनते रहें और इन्जॉय करते रहें कॉकरोच FM।